ਸਤਿਗੁਰੇ ਨਮਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂਦੇਵ ਨਮਹਿ ਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ, ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀ ਸਤਸੰਗ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦੀਨਤਾ। ਜੋ ਹਮਰੀ ਵਿਧ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾਬਿਧ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੇ ਆਪੇ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਤਾਪੇ, ਤਨ ਤਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ, ਜਿਤ ਮਿਲੀਏ ਚੂਕੇ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੀਨਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਭੌਤਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਦਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ। ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੀਨਤਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵਿਲੋਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਭਿਮਾਨ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਹੈ ਦੀਨਤਾ। ਅਮੀਰੀ ਹੈ ਅਭਿਮਾਨ, ਫਕੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਦੀਨ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਾਤਮਾ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਕਰਕੇ ਦੀਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੀਨਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਮ ਔਰ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਜਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ 8 ਮਹੀਨੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚੌਮਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। 8 ਮਹੀਨੇ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਰ ਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ 84 ਲੱਖ ਜੀਵਨ ਜੋ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ ਇਹ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਭੋਗੀ ਜੂਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਤਮ ਭੋਗ ਹੈ, ਨਿਚਲੀ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਤਮਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁੰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਪਾਪ ਦੀ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮਾਈ ਭੋਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਵਰਗਾ ਵਿਖੁੰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਭੋਗ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੈਸੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਭੋਗ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਜਨਮ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਜੈਸੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਵਰਗ ਵਿਖੁੰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਜਨਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪੂਰਨ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਪੂਰਨ ਹੈ, ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਜੀਵਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪ ਔਰ ਪੁੰਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਔਰ ਬੁਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੰਧਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ जन्म और मरण दे विच आना पैंदा है। तो मनुखे जन्म नू सार्थक करन वास्ते, इसका पूर्ण लाभ प्राप्त करन वास्ते गुरु की शरण चाहिए। गुरु की शरण दे विच अगर असी जावांगे तो गुरु ही सानू रस्ता दस सकते हैं, वो दिशा निर्देश दे सकते हैं जिस दे उपर चल करके ये जीवात्मा सदा लई इस जन्म मरण के गेड़ चो निकल सकती है। यानी कि अच्छी अच्छी कमाई जड़ी करनी है, वो अच्छी कमाई केड़ी है, वो पूर्ण कमाई केड़ी है, वो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु के उपदेशा अनुसार अपनी हस्ती नू मिटा देना ही है। इस जगत विच असी की देखते हाँ, जिस तरीके का असी वनस्पति का या कोई भी भोजन बनाते हाँ, 12 घंटे 8 घंटे के बाद असी की देखते हाँ, वो भोजन जो है नष्ट होण लग जाता है। यानी उहदे विच विकार पैदा होण लग जाता है। हुण उसी भोजन का रस लै करके इस शरीर का पोषण किया जाता है, हष्ट पुष्ट असी बनते हाँ और उस जीवात्मा नू इस दे विच रह करके अपने घर का भी काम करते हाँ, जगत का भी काम करते हाँ। तो हुण विचार करके देखो, जिस पोषण भोजन का जो अधिकतम समय है 8, 10, 12 घंटे दे विच उसने नष्ट हो जाना है, तो असी किस मान नू लै करके बैठे हाँ, किस अहंकार दे विच असी चक्कर लगा रहे हाँ कि उसका उस भोजन नू प्राप्त करन दे बाद असी जो हष्ट पुष्ट हाँ इस शरीर का मान करते हाँ। इस शरीर का मान भी झूठा है, अभिमान का कारण है। यानी कि अगर शरीर का मान है तो अभिमान नू जन्म देता है, और अभिमान नू गुरु साहबान ने सारे संतान ने अपनी बाणी दे विच इको ही लफज नाल याद किया है कि अब मैं दीर्घ रोग है। यानी कि यह गहरा रोग है, यह मार करन वाला रोग है, यह जीवात्मा नू बार बार जन्म मरण के गेड़ विच लेकर के आता है। होमै और नाम जड़े ने, होमै नामै नाल विरोध है, दोई ना वसे एक थाई। ये दोनों कदे भी कट्ठे नहीं रह सकते, एक जगह कदे भी नहीं। जिस तरीके नाल अंधकार और प्रकाश है, अगर प्रकाश आ गया तो अंधकार का की काम है, और अगर अंधकार है तो इसका सीधा जा मतलब है कि उत्थे प्रकाश की मौजूदगी नहीं है। इसी करके गुरु साहब उपदेश करते हैं, सारे संतान ने उपदेश किया है कि अगर परमात्मा नू प्राप्त करना है तो दीनता की लोड़ है। यानी कि इस जगत दे विच जिस तरीके दे नाल बंजारे ने जो मासा बैठ करके खाता है और कमाई करता है 8 महीने, उसे तरीके दे नाल मनुखे जन्म दे विच आकर के किरत करनी है, कमाई करनी है, पर किस तरीके दे नाल दीन होकर के, दीनता दे नाल फकीर होकर के उस दे दरबार दे विच उस दे दर ते गरीबी अपनानी है। इस तरीके दे नाल पिया रहना, जिस तरीके दे नाल एक कुत्ता है वो मालिक दे दर ते पिया रहिंदा, उस नूं कितना भी दुत्कारो पर वो कदे भी कटदा नहीं, कदे जांदा नहीं, उल्टा पूछ हिलांदा है, पैरां नूं चटदा है, अखीर तरस आ ही जांदा है। एक दिन मालिक जो है उसनू जरूर टुकड़ा दे देंदा है। उसे तरीके दे नाल एक गल हमेशा याद रखना, इस जगत दे विच उस परमात्मा नू प्राप्त कीते बिना मुक्ति नहीं हो सकती, और परमात्मा दी जड़ी प्राप्ति है वह कदे भी जीवात्मा जो है जितना भी उदम कर ले, कितनी भी ईमानदार बन ले, कितने भी अच्छे दान पुन कर ले, कदे भी उस परमात्मा नू प्राप्त करन दा अधिकारी नहीं हो सकता। ये फिर परमात्मा किस तरीके नाल प्राप्त हो सकता? परमात्मा जो प्राप्त होने की जो विधि है वह उसकी अपनी मौज है, अपनी समर्था है, अपनी मौज का मालिक है। वह जिसनों चाहे अपने नाल मिला ले, जिसनों चाहे अपने तो दूर कर ले, पर देखने विच की आता है इस जगत के विच जिन्होंने उस परमात्मा नू प्राप्त किया उन्होंने विच जो भी गुण सन उन्होंने गुणों नू ही प्रसारित किया जाता है। यही उपदेश दिता जाता है कि जिन्होंने इस परमात्मा नू प्राप्त किया है उन्होंने सच्चे होकर के किया है, किसी नू दुख नहीं दिता, किसी का हक नहीं मारिया, ईर्षा निंदा दे विच नहीं फसे, ता ही जा करके परमात्मा ने उहदा उत्तर प्रसन्न हो करके दया मेहर नाल अपने नाल मिला लिता। इसी करके इन्हां गुणां नू असी भी धारण करिए, अपने अंदरों प्रगट करिए, इसे तरीके का विचरण करते हुए इस जगत दे विच अपने तियां पुत्र जमीन जदा सारे की प्रतिपालना करते हुए अपने घर का भी काम करना है, ता ही जा करके असी परमात्मा नू प्राप्त कर सकते हाँ। पर एक चीज़ नू हमेशा ही चेते रखना, कभी भी परमात्मा ना तो जप दे विच है, ना संयम दे विच, ना ध्यान दे विच, ना किसी वर्त दे विच, ना नमाज दे विच, ना रोजे दे विच, ना किसी कीर्तन दे विच, ना ही कोई ऐसी किरिया इस जगत दे विच है, कोई तीरथ, कोई भ्रमण, जत तप संयम, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं, कोई भी कर्म नहीं जिस दे विच उस परमात्मा नू कैद कर लिया जाए। यानी कि असी अगर यह कही है कि असी जप करते हाँ 2-2.5 घंटे के जप नाल सानू परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, तुसी 24 घंटे हर पल हर घड़ी युगा युग जप करते रहो। ऋषि मुनिया की तरफ देखो, 1000 साल जप करते रहे ने, जमीन के अंदर रह करके, हवा विच बैठ करके, पानी विच रह करके, पर फिर भी उन्होंने अंदर वो परमात्मा प्रगट नहीं होया। ध्यान करते रहे, योगियों ने ध्यान किए, हठ योग अपनाए, इस शरीर नू कष्ट दिते, कितने योग अपनाने दे बाद, कितने कष्ट चुकाने दे बाद, हजारा साल तप करने दे बाद भी वह परमात्मा जो है उन्होंने ध्यान दे विच नहीं आया, ना जप विच आया, ना ध्यान विच आया, ना संयम विच आया, ना जितेंद्री होकर प्राप्त किया जा सका। यानी कि जदों भी परमात्मा जिसनों भी मिलया अपनी मौज के नाल मिलया, अपनी प्रसन्नता के नाल मिलया, तो जीव का की भाव है। इसका यह अर्थ नहीं है कि असी कोई उद्यम ही नहीं करना है। जीवात्मा मनुखे जन्म विच आकर के ही पुरुषार्थ करन दा उपदेश दिता जांदा है। मनुखे जन्म विच ही पुरुषार्थ कर सकता है, उदम कर सकता है। बाकी दे जड़े 84 लाख जामे ने उन्हां च विचार करके देखो, बुद्धि ना दी कोई चीज़ ही नहीं। यानी कि 5वें तत्व का अभाव है, कोई एक तत्व दे नाल बनया है, कोई 2, कोई 3, कोई 4 दे नाल। यानी कि यह दिमाग जो है यह 5वें तत्व नाल उत्पन्न हुंदा है, जिसनों आकाश तत्व कहिंदे आ। उहदे अभाव दे नाल उन्होंने भी सोझी नहीं, समर्था नहीं पुरुषार्थ करन दी, परमात्मा नूं प्राप्त करन दी। यानी कि पिछले जन्मां च उन्होंने जो भी कर्म किए सन, अच्छे किए या भैड़े किए, उन्होंने बंधनकारी प्रभाव जो है वह जैसिया उन्होंने कामना सन, उन्होंने कामना के अधीन उस जीवात्मा उन्होंने जूना दे भी जन्म दिता गया। और जैसे कर्मों का बंधनकारी प्रभाव से उन्होंने बंधनकारी प्रभाव के अनुसार उन्होंने वृत्ति बनी, और उन्होंने वृत्ति अनुसार ही वह किरिया कर रहे हैं। उन्होंने उस तो अगे किसी चीज़ का बोध या ज्ञान नहीं। यानी कि वह चाह करके भी अगर आकाश तत्व गुप्त है, किसी जीवात्मा किसी पिंजरे के बीच आ करके कुछ बोध हो भी जाता है, तो उसनु इस चीज़ का पता नहीं चलता कि परमात्मा मैं किस तरीके दे नाल प्राप्त कर सकते हैं। असी इत्थे बैठ करके मनुखे जन्म के भी इस दी कीमत नू नहीं जानते, देवी देवत्या पूजते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश नू परमात्मा कह करके जानते हैं। कोई निंदा या वडियाई की गल नहीं है, ये उत्तम भोगी जूना ने यह ड्यूटियां दे रहे हैं। जिस तरह गुरु घर के आ करके सानू भी ड्यूटियां बख्शिया जांदियां ने, माण दिता जांदा है, पर यह माण प्राप्त करके असी किस हंकार के किस होमै के आकर के बैठ जाते हैं। कभी जीवात्मा की कोई ताकत नहीं है कि पूर्ण सतगुरों के कोल जा करके बैठ सके। ये सतगुरों की अपनी मौज है, अपनी ताकत, अपनी समर्था है। वह दया करते हैं कि जीवात्मा के वह पाप कर्म जड़े किए ने उन्होंने उपर नज़र नहीं मारते, उन्होंने तरफों अख बंद कर लेंगे ने। वह सिर्फ उस परमात्मा के अंश यानी कि रूह की तरफ नज़र मार करके ये मौका देंगे ने, ये दया मेहर करते हैं अपने कोल बैठा की, और मान सम्मान देंगे ने गुरु घर के प्रबंध कर। पर असी उसका की फायदा चुकते हैं, कितना नजायज़ फायदा चुकते हैं कि असी अपने आप नूं भुल जाते हैं। असी ये भुल जाते हैं कि असी इंसानी जन्म के विच आ, इंसानी जन्म के विच आ करके इंसान की देखभाल करने वास्ते सानू रखा गया है, और एक इंसान जन्म के विच आ करके उसकी कोई मर्यादा भी है इंसान की, जिसनों इंसानियत किया जाता है। और उस इंसानियत का पालन करने वास्ते असी इतने दूर हो जाते हैं, असी चंगे पले गल्लां करते सा, पर जब सतगुरु ने सानू मान बख्शिया असी श्लोकों के विच गल करन लग जाते हैं। असी यह भी भुल जाते हैं कि इंसानियत की की मर्यादा है, किस लहजे के विच किस तरीके दे नाल एक इंसान दे नाल सानू गल करनी चाहिए, सानू गल करन दा तरीका भी भुल जाता है। असी गुस्से दे विच आ करके और कई तरीके दे कोड़े वचन बोलते हैं, तलवार दा उकाब 2, 4, 6 साल यानी कि किसी ना किसी समय आ करके जरूर भर जाता है, और वह भी समा आ जाता है कि उदो परवाल रोए उग जाते हैं, यानी कि उसका दाग भी मिट जाता है, पर जबान दाग दिता हुआ जख्म जड़ा है। आखिरी समय तक भी अगर जीवात्मा जदों की चोला छड़न लगी है, अगर वह कोड़े वचन नूं याद कर ले तो साध संगत जी वह तड़फ पैंदी है उस वेले। तो हुण विचार करके देखो, ये सारा मान सम्मान किसने सानू दिता? सतगुरु ने दिता। ये उसकी दया है, उसकी मेहर है, उसकी दया मेहर का असी की फायदा चुकिया? होना तो यह चाहिए सी जिस डाल नूं फल लगता है, विचार करके देखो, कोई ऐसी चीज़ बंद करके एक डाल नूं देखो जिस दे विच वजन है, वह डाल अपने आप चुकन लग जाती है। यानी कि मान सम्मान की सी, सतगुरु सानू फल देना चाहते सन, पर फल प्राप्त करन दे बाद सोना की चाहिए सी? असी निमाणे हो जाते, साढ़े नम्रता आ जाती, साढ़े दीनता आ जाती, असी इतने दीन हो जाते कि असी एक कीड़ी वाकण जिस तरीके नाल असी चलते हाँ, कभी कीड़ी के उपर असी नज़र मार के नहीं देखा कि साढ़े पैरों तले कितनी सूक्ष्म जीवात्मा ने जिन्हों असी रोंदते हुए चले जाते हैं। उस तरीके दे नाल ज्यों ज्यों सानू सतगुरु मान बख्शते ने, उस तरीके दे नाल सानू चुकन दे बजाए, निमाणे होने की बजाय, नम्रता की बजाए, दीन होने की बजाय, असी हंकार दे विच आ जाते हैं, होमै दे विच आ जाते हैं, अपने आप नूं बाकियां तो श्रेष्ठ समझण लग जाते हैं। असी यह भुल जाते हैं कि सतगुरां ने साढ़े उन्हां कर्मां दे उपर नज़र नहीं मारी जिन्हां कर्मां दे उपर अगर एक वेरी भी कर्म सानू बख्श दिता जावे ते साध संगत जी कई करोड़ जन्म लग जाणगे इस जीवात्मा नू दुबारा तो मनुखे जन्म विच आण वास्ते। असी किस हंकार दे विच बैठे हां, इह सतगुर दी रहमत है। निमाणे को जो देतो माण, गर्भ कोर में राखण हार, इस सृष्टि दे विच कौन है इस जीवात्मा की पालना करन वास्ते, कौन है इसकी रक्षा करन वास्ते, गर्भ जून दे विच कौन रक्षा करता है, इस निमाणे नू 84 लाख जून चो नरका चो कौन कढ के लियांदा है। यह सतगुर की रहमत है, सतगुर की दया है। उन्हां दी दया रहमत दे नाल ही यह सानू मनुखा जन्म प्राप्त हुंदा है। और उस तो वड्डी दया ये करदे ने इस जगत दे विच आ करके वह सानू अपने नाल मिला लैंदे ने, अमृत का बाटा देंदे ने, अमृत छकांदे ने, नाम बख्शदे ने। असी इन्हां लफ्ज़ां दे विच फस के रह जांदे आ। जो उपदेश उन्होंने दिते, जो रस्ता सानू दसिया, उस रस्ते दे उपर असी चलदे ही नहीं, असी उस रस्ते दे उपर चलांगे नहीं, उस मर्यादा दे विच आवांगे नहीं, तो किस तरीके दे नाल असी उस फल नू प्राप्त कर सकते हैं। असी तो एक बांस वाकू सीधा आकाश की तरफ देखना शुरू कर देंदे हाँ, झुकण की बजाय, दीन होने की बजाय। असी अभिमान दे विच हुण बांस का असर की है विचार करके देखो, जदों बांस नू कटिया जांदा है उस दी बांसुरी बनाई जाती है, जगह जगह मोहरियां कीतियां जांदियां ने, ते बाकी सारा जन्म सारी उम्र यानी कि उस बांस दे विच जो है फूका मार करके उसनों ठंडा किया जाता है। उसका वह अभिमान जो है उन्होंने त्यागण वास्ते, उन्होंने कढ़ण वास्ते उन्होंने मोहरिया के फूका मारिया जाए ने। असी भी बिल्कुल ठीक उस बांस के तरीके दे नाल आकाश की तरफ देखना शुरू कर देंगे, उत्ते दे उत्ते चढ़ना शुरू कर देंगे। होना तो यह चाहिए सी कि असी बिल्कुल कीड़ी वाकण इतने निमाणे हो जाते कि सानू पता भी ना चलता कि कोई कदों सानू अपने पैरों तले रोंद करके चला गया है। यह है वह अवस्था जिस अवस्था को प्राप्त करने के बाद इस जीवात्मा नू उस परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त होती है। और कोई भी रस्ता नहीं है, कोई भी विधि नहीं है। इस करके सारे लफ्जा दे विचों निकल जाओ। इस जगत दे विच जितने भी लफज, जितने भी धर्म इस जगत की मत अनुसार चल रहे ने, जब तक उन्हां दे नाल असी प्यार कर रहे हैं तद तक असी उस परमात्मा नू मिलन दे प्राप्त करन दे अधिकारी हो ही नहीं सकते। चाहे असी राधा स्वामी कहीए, चाहे सतनाम कहीए, चाहे वाहिगुरु कहीए, चाहे राम कहीए, चाहे ईश्वर कहीए, चाहे अल्लाह कहीए, चाहे किसी भी लफ्ज़ दे नाल उस परमात्मा नू याद करिए, चाहे उन्हां लफ्ज़ां नू असी दोहरांदे रहिए जिन्हां नू पूरन सतगुरां ने सानू बख्शे ने, तद भी असी उस परमात्मा नू प्राप्त करन दे अधिकारी नहीं हो सकते। पर कदों आवांगे, जदों असी सचमुच दी दीनता नू अपनावांगे। और दीनता तदी अपनाई जा सकती है जदों असी मन दे हुक्म दे विचों निकलांगे। ये सारे जितने भी लफ्ज़ां दे नाल असी प्यार करदे हां, इन्हां लफ्ज़ां दे विच ही जम रहे हां, इन्हां लफ्ज़ां दे विच ही मर रहे हां। हुण हिसाब लगाओ कदों तो असी उस सृष्टि दे विचों उस परमात्मा तो अलग होए हां। कोई इस दी गणना नहीं कर सकदा, कोई ये नहीं दस सकता। इतनी लंबी उम्र नहीं, किसी की इतनी समर्था नहीं, ब्रह्मा भी नहीं दस सकता कि कदों किस वक्त असी इस धरती से उस परमात्मा तो विछड़ करके आए हाँ और बार बार जन्म और मरण के गेड़ दे विच फसे हुए हैं। उसकी वजह की है, सानू परमाया गया। परमाया किसने? उस मन ने परमाया। मन ने इस तरीके दे नाल परमाया, अधूरी ताकतां दे नाल इस तरीके दे चमत्कार दिखा करके इस जीवात्मा नू यह दस दिता कि तेरा मनुखा जन्म उस दे विच मोक्ष दी जो प्राप्ति है वह सिर्फ और सिर्फ दान पुन दे नाल है। और गुरु साहबां ने शुरू च ही स्पष्ट कर दिता है कि दान पुन दे नाल भी यह जीवात्मा वास्ते पाप है। क्यों? क्योंकि यह पुन कट्टण वास्ते या तो उन्हें स्वर्ग वैकुंठा दे विच जाना पेगा या इस दुख दे नाल लै करके इस लोक दे विच जन्म और मरण दे विच यानी कि मनुखे जन्म दे विच भी आना पेगा। यानी कि 84 लाख दे विचों निकलण दा कोई भी उपाय नहीं है। और इसी भ्रम नू लै करके ये जीवात्मा जो है इस तरीके दे निवली कर्म करके बार बार जन्म और मरण दे गेड़ दे विच इस जगत दे विच विचरण कर रही है। और गुरु साहब दे विच यानी जब तक असी पूरन सतगुरां दी गुरबिन बावले तरे ना कोई, यानी कि जब तक असी तुलसीदास जी ने अपनी बाणी भी स्पष्ट किया है कि गुरु की शरण दे विच नहीं जाते, गुरु दे विच ताकत है, गुरु दे विच समर्था है इस जगत तो ले जाण दी, यानी कि इस भव चागल तो अगर असी पार होना चाहते हाँ तो सानू दीनता नू अपनाना पेगा। ये दीनता कदों पैदा होंदी है? सब तो पहले अगर कोई जीवात्मा इस 84 लाख जामे दे विचों निकल करके परमात्मा नू मिलन लई तड़फदी है, तड़फ उत्पन्न करती है, यानी कि विरा 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 आखिए विरा तू सुल्तान, जो तन विरा ना उपजे सो तन जान मसान। बाबा फरीद जी ने अपनी बाणी दे विच कितनी शानदार गल कही है कि जिस तन दे विच विरा नहीं है उसनू मसान जान। मसान कहंदे ने जिसले एक मुर्दे नू असी साड़दे आ, मुर्दा सड़ जांदा है, पिछे मिट्टी बचदी है, हुण ओह मिट्टी किस लायक है? किसी मत्थे दे लायक लगाण दे लायक नहीं है। किसी काम नहीं आती, यानी कि उसनों असी दरिया के रोड़ दें, किसी काम की नहीं है, यानी कि असी जींदे जी इस ला एक लाश के बराबर हाँ, एक मुड़दे के बराबर, एक मसाण के बराबर। अगर साढ़े अंदर वह ललक नहीं है, वह असी पैदा नहीं की उस परमात्मा मिलने वास्ते, कोई ऐसी हवस नहीं पैदा की, असी जगत की वस्तुआ संबंधा प्राप्त करने वास्ते पागल होए पे हाँ, किस तरीके दे नाल अपनी हस्ती मिटा रहे हैं, कितनी हवस साढ़े अंदर है। किसी साढ़े संबंधी का विह हो जाए, जमना मरना हो जाए, बारह बारह चौदह चौदह घंटे, अठारह अठारह घंटे, दो दो दिन असी पलक चप्पे बगैर दिन रात असी सेवा करते हाँ, इस तरीके के कर्म करते हाँ, पर जदों उस परमात्मा नूं प्राप्त करन दी वारी आती है, भजन की वारी आती है, उस वेले साडा शरीर जवाब दिंदा है। यानी विचार करके देखो, चौबी घंटिया दे विच असी भजन किस वक्त करना पसंद करते हाँ, किस वक्त परमात्मा दे नाल जुड़ना पसंद करते हाँ। जदों सवेर हुंदी है, सब तो पहले असी अपने मुख काम करते हाँ, जिहड़े कि साडे धंदे दे नाल, संबंधियां दे नाल, तियां पुत्तर माँ बाप दे नाल संबंध रखते हैं, वह सारे ही कर्म असी करते हाँ। यानी वह सारे कर्म करते हुए सारा दिन बीत जाता है, सारा शरीर टुटन लग गया, थकावट हो गई, रात हो गई, बिस्तरे ते पहुंच गए, उस वेले भी सानू जा करके ख्याल नहीं आता। पर अगर ख्याल आता वे तो उस वेले साडे शरीर दे भी ताकत नहीं है, समर्था नहीं है, उम्र का तकाजा है, और सारा दिन असी सारी अपनी हस्ती जड़ी है वह सारी ताकत इस जगत का काम करन वास्ते, यानी कि पराए गधे बन करके इस जगत विच ही खजल कर दी। हुण चाह करके भी असी उस परमात्मा का भजन नहीं कर सकते, अपने अंदर वो ठरक ललक पैदा नहीं कर सकते उस परमात्मा की, परमात्मा मिलन की। तो फिर किस तरीके दे नाल जब तक वो विरह नहीं होएगी, वो प्रेम की पैदा नहीं हो सकती। विरह तो प्रेम की उत्पत्ति है, अगर विरह ही नहीं है तो प्रेम कितों आ जाएगा। हुण विरह तो है इस जगत के नाल, तो प्रेम असी परमात्मा दे नाल किस तरीके दे नाल कर सकते हैं। वो प्रेम भी जो है साडा झूठा है, वह प्रेम भी सारा इस जगत की वस्तुओं के नाल है। साडा बच्चा बीमार हो जाए, सारी रात असी उदे सराने बैठ करके कट देने हाँ कि बीमारी है, थोड़ा जहा उदा शरीर तप रहा है, पर सानू डर है। किस चीज़ का डर है? कि बच्चा साढ़े हथों ना निकल जाए। कई बार असी सुनते भी हाँ कि बच्चे ने थोड़ा जहा बुखार चढ़िया और वह चोला छड़ गया, यानी कि साढ़े अंदर वो डर पैदा हो गया कि साढ़े नाल भी ऐसा भाणा ना वरत जाए। इस करके साढ़े अख जड़ी है वह चपकती ही नहीं, पलक चपकते नहीं, उसके सराने ही असी सारी रात जो है बैठ करके कट देंगे हाँ। क्यों? क्योंकि डर है। किस करके? प्यार करके। प्यार है उस बच्चे दे नाल, और उस बच्चे दे प्यार दे विचों डर दा डर दे पैदा होया है। किस चीज़ का? कि बच्चा साढ़े हथों ना निकल जाए। हुण जिस दे अंदर विरह नहीं, प्यार नहीं, तो डर कितों उत्पन्न होएगा? यानी कि विरह जिस परमात्मा नूं प्राप्त करन वास्ते जीवात्मा ने अपना ली, उसनों उस दे नाल प्रेम भी हो जाएगा। और अगर परमात्मा दे नाल प्रेम हो जाएगा, साध संगत जी, फिर पक्की गल है कि सवेरे उठन दे बाद वो कदे भी इस जगत का काम बाद विच करेगा, पहले अपना भजन करेगा, पहले अपने गुरु के उपदेश का पालन करेगा, जो उसके सतगुरु ने अपनी शरण के बिठा करके उसके सिर के उपर प्यार का मेहर पर हथ रख करके उसनु उपदेश दिता सी कि किस तरीके दे नाल इस संसार के जंजाल के विचों तू निकलना है, और उस उपदेश नु पालन करते हुए तू अपने सतगुरु नु प्राप्त करना है अंतर दे विच, तां ही वो प्यार प्रेम की उत्पत्ति होएगी। हुण जिसने ऐसी विरह पैदा कर ली, अपने सतगुरु के नाल प्रेम कर लिया, उस दे विच वो सत पक्की गल है कि जड़ा अद्धी राती उठ करके उस परमात्मा का भजन करेगा, उसनों डर भी पैदा हो जाएगा। किस चीज़ का डर? कि कितने मेरी कमाई ये जगत के संबंधी या ये मोह ममता जो है खो ना लवे, यानी कि मैं परमात्मा तो उस सतगुरु तो दूर ना हो जावा। असी बार बार फरियाद करते हाँ उस परमात्मा के अगे कि सानू अपने तो दूर ना कर दे। ये दूर करन दा भाव जो है ये उन्हां जीवात्मा के अंदर पैदा होंदा है जड़े ईमानदारी दे नाल निमाणे हो करके दीन हो करके उस परमात्मा नूं प्राप्त करना चाहते ने, जड़े तड़फते ने जिन अपनी उस जीवात्मा नूं जड़ी कि भुखी और प्यासी है उसके उद्धार करन वास्ते उस परमात्मा नूं मिलना चाहते ने, सदा लई इस जीवात्मा नूं मुक्ति देना चाहते ने, वही उस जीवात्मा जो है उस परमात्मा दे नाल प्यार कर सकती है। और प्यार दे नाल ही ये डर पैदा होंदा है। जदों साध संगत जी ये डर की तलवार, सतगुरु का डर, एक कम कीती गई कमाई दे खो जाण दा डर, हुण कोई कह सकदा है वाणी दे विच किया गया है कि जड़ी भजन दी कमाई है ये कोई खो नहीं सकदा। साध संगत जी विचार करके देखो, असी बड़ा भजन करते हाँ, बड़ा भजन जुड़ भी गया है, जड़ा जुड़ गया है उन्हों कोई नहीं लै सकदा, उसका फल निश्चित है। हुण विचार करके देखो, अगर कोई ममता, कोई मोह, कोई ऐसी वस्तु साढ़े अंदर कार कर गई, असी किसी का ऐसे जीवात्मा का संघ कर लिया यानी कि जिस दे अंदर मन का कोई विकार प्रबल है, ऐसे साकत का संघ असी करन दे बाद अगर अपने इस रस्ते तो भजन बंदगी दे रस्ते तो दूर हो गए, अच्छे कर्मा तो दूर हो गए, सतगुर दे घर की सेवा तो दूर हो गए, तो हुण विचार करके देखो जड़ी असी उत्तम कमाई करनी सी इस जीवात्मा नूं मुक्त कराने वास्ते, असी क्या उस कमाई तो दूर नहीं हो गए? वह कमाई साडे कोल खोई नहीं गई, यानी कि असी चाह करके भी उस कमाई नूं उस वक्त कर नहीं सकते, क्यों? साडे अंदर जो है इस जगत की ममता पैदा हो गई और माया ने जो है इस ममता के जरिए इस जीवात्मा नूं परमा दिता, एक ऐसा पर्दा दे दिता कि उस पर्दे दे विच परले पासे वह परमात्मा का जो तस्वीर है, वह प्रकाश है, जो आवाज है, वह सानू सुनाई नहीं देंदे। यही वजह है कि अज असी की देखते हाँ कि सदियां ही हो गई इस जीवात्मा नूं परमात्मा तो अलग होए, वह परमात्मा का गुण जो कि आवाज स्वरूप है, जो स्वरूप है, जो दे विचों ही आवाज आती है, राग रतन वर पार परियां शब्द गाउन आईयां, ये जड़ी तुक है ये वो इशारा करते ने गुरु अर्जन देव पातशाह, वो इस तुक की तरफ ये मतलब निकलता है कि वह परमात्मा की जड़ी आवाज़ है वो इस तरीके की आवाज है, एक मिठी रागणी है, जिस तरह की बहुत सारिया परियां परिवार समेत मिल करके उस परमात्मा के गुण नू गा रही ने, यश नू गा रही ने, इस तरीके की ये आवाज एक प्रकाश के विचों निकलती है और ये प्रकाश की है, ये जड़ और चेतन का आधार है। इस सृष्टि के भी जितना भी जो कुछ भी असी देखते हैं, चाहे सूक्ष्म लोक ने यानी त्रिकुटी तक का राज और उस तो अके चेतन परम चेतन मंडल ने, हर चीज का जो भी पैदा कर रहा है, उधार कर रहा है, आधार दे रहा है, वह सब दे पिछे एक प्रकाश और आवाज है, और इसी प्रकाश और आवाज नू नाम की संज्ञा दी गई है, शब्द किया जाता है, अकथ कथा किया जाता है, वाणी किया जाता है, कीर्तन किया जाता है, यानी कि जो कुछ भी है ये प्रकाश और आवाज है, और इसी गुण नू असी प्राप्त करे करके ही उस परमात्मा दे नाल मिल सकते हैं। अगर असी इस गुण नू प्राप्त नहीं कर सके तो याद रखना जितना मर्जी जप तप असी कर लीए, जितने मर्जी पाठ पोथियां कर लीए, जितने मर्जी भोग पा लीए, जितने मर्जी कीर्तन और दासां कर लीए, कदे चाह करके भी असी इस जीवात्मा का उद्धार नहीं कर सकते। यही वजह है कि आज तक असी नहीं कर सके, असी जब का जन्म लिया है कोई पहली बारी इस जगह नहीं आकर के बैठे या सत्संग सुन रहे, असी बहुत सारे ऋषि मुनिया की शरण विच गए हैं, उन्होंने उपदेशों श्रवण किया है, पर विचार करके देखो कदे भी असी उस फल नू प्राप्त करन दी नहीं कोशिश की, क्योंकि फल लगन दे बाद डाल नू चुकना चाहिदा सी, उपदेश सुनन तो बाद होना की चाहिदा सी। ए जीवात्मा चेत दी चेतन दा की भाव है कि उस जो निर्देश दिता सी ऋषि मुनिया ने असी उस दे उपर अमल कर दे, असी कदे भी उसना दे उपर अमल नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने आखिरी समय दे बिल्कुल स्पष्ट उपदेश किया सी कि हुण कोर कलयुग आ जाएगा मेरे शरीर रूप दे विच इस जगत नू त्याग दे ही, जो यानी कि जदों भी मैं इस शरीर रूप तो इस जगत तो निकलांगा कोर कलयुग व्याप्त हो जाएगा, और कल दे विच कोई भी जप तप संयम कोई भी तीर्थ व्रत नेम जो है काम नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ हर नामा हरि दा नाम एक सिर्फ कीर्तन ही उस परमात्मा दा कोई काम करेगा, यानी कि कल कीरत केवल हर नामा, गुरु नानक साहब ने अपनी बाणी स्पष्ट किया। पर असी उस नाम नू की समझ करके जानते हैं, जिस तरीके दे नाल असी पूर्ण सतगुरां दी शरण लैण दे बावजूद भी उन्हां लफ्ज़ां नू ही नाम समझ के बैठ गए। गुरु साहब कई बार उपदेश कर चुके ने कि उन्हां नू नाम सिर्फ सिर्फ इस करके किया गया है क्योंकि पूर्ण सतगुरां दे मुखारबिंद चों उत्पन्न कीतियां आईयां वो तिरंगा ने जिन्हां नू असी लफ्ज़ या यानी कि नाम कह करके पुकारदे हां, पर जिहड़ियां बाकी दी तिरंगा ने उन्हां नू असी की कह करके पुकारांगे? क्या वह नाम नहीं ने? तो क्या वह बाकी नाम भुलण दे बराबर है? तो सिर्फ यह दो चार पांच लफ्ज़ां नू जप करके असी उस परमात्मा नू प्राप्त करन दे काबिल किस तरीके नाल हो सकते हैं? यह सिर्फ एक पौड़ी है, एक रस्ता है, और हर युग दे विच जितने भी ऋषि मुनि संत इस जगत विच आए ने उस परमात्मा नू मिलाण वास्ते, वेद पढ़ करके देख लो, शास्त्र पढ़ करके देख लो, जितने भी ग्रंथ इस जगत विच मौजूद ने सारे ईसाइयां दे पढ़ के देख लो, पारसियां दे पढ़ के देख लो, हरेक ग्रंथ दे विच सिर्फ भाषा ही अलग है, बाकी उन्हां दा निचोड़ अर्थ इको ही है, यानी कि रूहानियत इको ही गल कहंदी है कि जीवात्मा जो है ये भुखी प्यासी तड़फ रही है उस परमात्मा नू मिलन वास्ते, यानी कि जीवात्मा की मुक्ति कदों है? जदों सिर्फ परमात्मा नू प्राप्त कर ले। मरण दे बाद मोक्ष किसी नू भी प्राप्त नहीं होया, याद रखना चाहे पूरन सतगुरां दी शरण दे विच आओ या ना आओ, यह जींदे जी दा मजबून है। किसी भी संत ने यह उपदेश नहीं दिता कि मरण के बाद असी तुहानू लैण वास्ते आवांगे, यह सतगुरु की मौज है, यह उन्हां दी इच्छा समरता है कि वह सानू मरण के बाद भी संभाल करते हैं। पर किन्हां दी संभाल करते हैं? जिन्हां ने जींदे जी अपनी अस्थि मिटाई होंदी है। मरण के बाद कोई भी ऐसी अस्थि नहीं है जिहड़ी साडी प्रतिपालना करेगी, यानी कि अगर असी प्राप्त करना चाहते हाँ मोक्ष नू, मुक्ति नू, तो यह जींदे जी का मजबून है जिन्हें जींदे जी अपनी सुरत नू समेट लिया, ये ख्याल समेट लिया, यानी कि दीन हो गया उस परमात्मा की तरफों। डर तो दीनता की उत्पत्ति है, अगर डर नहीं है तो दीन हो ही नहीं सकता। डर किस दी? सतगुरु की तलवार जिहड़ी कि सिर के उपर हर वक्त लटकती रहे। एक पासे असीं कहिंदे आ सतगुरु साडे अंदर आ करके बैठ गए, हुण दूसरी तरफ यह विचार किया जाता, यह उपदेश दिता जाता है कि यह सतगुरु जड़े ने ईश्वर परमात्मा का रूप ने, तो क्या परमात्मा और ईश्वर जो कोई शिष्य उसने शरण के जाता है उसी वक्त उसके अंदर बैठते हैं? ये अधूरा अर्थ है, यानी कि वह परमात्मा सतगुर के जरिए इस जगत के जड़ और चेतन हर वस्तु के हर एक आधार दे रहा है, चाहे कोई उसनू मने चाहे कोई उसनू ना मने। निरभाव निरवैर, उन्होंने किसी का डर नहीं, किसी का वैर नहीं। अगर उसनू किसी का डर होवे यानी कि उसके सामने कोई होर वस्ती होवे, कोई उसके मुकाबले की चीज होवे तो कोई डर होवे, किसी का वैर होवे तो सृष्टि कद ही खाली हो गई होंगी। उन्हें कोई मने या ना मने, कोई पूजा करे या ना करे, वह जड़ और चेतन सब की प्रतिपालना कर रहा। ऐसे जीव जो उसनू जानते भी नहीं, उस तक पहुँच भी नहीं रखते, उन्होंने पता ही नहीं उस चीज़ का, उसके बाद भी उसकी प्रतिपालना करते हैं। एक याकूत होया है जरनैल मुसलमाना दे भी, वह कदे भी किसी सिख नू यानी कि किसी भी मनुख नू भोजन कराए बिना कदे भी भोजन नहीं सी छकदा। एक बारी बहुत समा निकल गया तो उसनू कोई भी ऐसा बंदा मनुख ना नज़र आया कि जिसनू भोजन कराने के बाद वह भोजन कर सकता। बड़ा विचार करता रहा, इतनी देर नू की देखता है कि एक मनुख गुरु का सिख चलिया आ रहा है। जब वो कोल आया तो उसने उसनू पूछया, भाई तू भोजन करेगा? उसने कहा, जी जरूर करांगा, मैं बड़ी दूर तो पैदल चलता आ रहा वहां, बहुत भुखा प्यासा वहां, तो बड़ी परमात्मा की कृपा हो गई कि मैंने तुसी याद कर लिया है। जिसले उसनू भोजन दोनों के अगे थाल लगाए गए, भोजन करन दा समा आया, उसने याकूत ने अख बंद करके परमात्मा का शुक्र गुजार करन लग गया। पर वो जो गुरु का प्यारा सी उसने भोजन करना शुरू कर दिता। जिसले उसने ये हसर देखिया कि उसने परमात्मा का शुक्र नहीं किया है और भोजन करन लग पिया है, और उसले उसने उसनू जो है खाने तो बेदखल कर दिता। उसने कहा भी तू परमात्मा का शुक्र नहीं किया है जिसने तैनू ये दात बख्शी है, इस करके तू इस लायक नहीं इस भोजन दे करन दे, तो तू इस भोजन तो बेदखल है। उसले उसने सिख ने की किया है कि अगर बुलाया भी तू ही सी और बेदखल भी तू ही कर रहा है, और जिस परमात्मा की तू गल कर रहा है उस परमात्मा के बारे मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं आज तक उस परमात्मा का कदे नाम नहीं लिया, ना मैं कदे उस परमात्मा की चेत आई है और ना ही कदे उसने मैं चेताया है। और यह वचन करके वह सिख जो है उतो चला गया, और ज्यों ही चला गया उस वेले आकाशवाणी हुई है कि हे याकूत तू कौन होंदा है मेरे एक बंदे नू मेरे दिते हुए खाने तो मसहूत करन वाला, यानी उसनू बेदखल करन वाला, यानी कि इस तो विचार कर, उसनू बुला करके पूछ कदी उसने मेरा नाम लिया है और कदे उस पहले भी कदी भुखा रहा है। उसने जकूत ने उसनू बुला करके सिख नू पूछया कि कदी पहले भी तू भुखा रहा? उसने कहा नहीं, आज पहली वेरी है कि मैं इस खाने तो बेदखल किया जा रहा, इस तो पहले मैं कदी भी भुखा नहीं रहा, हमेशा ही मैं परपेट भोजन मिलया है। उस वेले आकाशवाणी दोबारा हुई कि हे जकूत मैं कदी भी ये दान पुन या इस तरीके की वस्तुओं के जरिए मैं कदी भी किसी नू प्राप्त नहीं होया, इस करके सारे भ्रम चो निकल जा, जड़ा मैनू याद नहीं करता, जड़ा कदी चेत नहीं आई जिसनू मेरी, उसका भी मैं परपेट भोजन दिता वा, यानी कि सारे जगत जड़ और चेतन का आधार मैं ही हाँ और मैं ही सब की प्रतिपालना कर रहा, और अगर तू मैनू प्राप्त करना चाहता है तो मेरे जीवां दी यानी कि सृष्टि च लगाए गए बाग दी हर एक दी सेवा कर, हर एक दी बंदगी कर, हर एक दी पूजा कर, हर एक दे विच मैनू रमिया होया देख, ता ही जा करके तू इतना दीन हो पाएगा कि मैनू हर जगह देखने दे बाद अंतर दे विच मेरे निज स्वरूप नू भी तू प्राप्त कर सकेगा। तो इस तो स्पष्ट हो जाता है कि यह जीवात्मा अगर अपना उद्धार करना चाहती है तो जब तक दीन नहीं होएगी तद तक असी उसनू प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु साहब के समय के भी एक बहुत अच्छा दृष्टांत आता है भाई बेला जी का, जिन्होंने कि बड़े ही निमाणे होकर के उस परमात्मा की सतगुरु की प्राप्ति की। किस तरीके दे नाल जो एक जट सिख जो है गुरु साहब के कोल पहुँचया है, सेवा मंगी है कि मैनू भी अपने कोल सेवा का मौका दियो, मैं भी तुहाडी सेवा करना चाहता वा। गुरु साहब ने हुक्म किया है भाई तू कोई कोई शस्त्र चलाना जानता है? कहन लगा जी नहीं। क्या लंगर पानी बनाना जानता है? कहन लगा जी नहीं। या तेरे च कोई ऐसा गुण है कोई पाठ पढ़न पूजा दा? कहन लगा जी नहीं, मैं तो कभी कोई भी अक्षरी ज्ञान नहीं, मैं कभी किसी किताब के नज़दीक भी नहीं गया। तो गुरु साहब उपदेश करते ने तो भाई तू फिर आप ही दस दे तू किस तरीके की सेवा करना चाहता है, किस तरीके का तू काम कर सकता है। उसले भाई बेला जी ने यह कहा है कि मैं तुम घोड़ियां को रखो, मैं घोड़िया की संभाल करा, उन्होंने लिद साफ करा। हूँ एक जट है, अज जट न कितना अभिमान है, कितना अहंकार है अपने जात वर्ण श्रेणी का, पर वो भाई बेला की तरफ देखो, वह सारे अपनी जात का अभिमान त्याग करके, जगत की सारी वस्तुओं का त्याग करके, निमाणे होकर गुरु की शरण में गए ने, और घोड़िया की सेवा जो है उन्होंने सेवा करने, यानी कि उन्होंने पालना ली है, उन्होंने लिद साफ करते हैं, उन्होंने मालिश करते हैं, और जिस तरीके से यानी कि भोजन समाग्री घोड़िया चाहिए है वह टाइम से उन्होंने देंगे ने। एक बार गुरु साहब जदों देख आए ने बड़े प्रसन्न होए ने, घोड़े बड़े हष्ट पुष्ट सन, तो उस वेले बड़े प्रसन्न होकर के उन्होंने बेलिया किया है भाई बेलिया कितना क पढ़िया लिखिया? कहन लगा जी मैं पढ़िया कोई नहीं है। उस वेले गुरु साहब अपनी मौज में मस्त सन, बड़ी प्रसन्न सन, कहन लगे भाई बेलिया तैन असी पढ़ाया करांगे, तू साडे कोल आया कर, असी तेरी ये कमी जड़ी है वह भी दूर कर देंगे। हुण गुरु की प्रसन्नता आ गई, मौज आ गई, रहमत करन दा विचार आ गया, तो शिष्य नू जो है अपने कोल खिंच लिया है। जदों तो अगले दिन तो भाई बेला जी रोज़ ही जो है गुरु साहब को तैयार होकर के जाते हैं, और गुरु साहब कोई ना कोई रूहानियत के नाल संबंध रखने वाला एक ना एक उपदेश देंदे सन, कोई लंबा चौड़ा पाठ नहीं सन पढ़ाते, एक वचन करते सन भाई बेलिया कोई झूठ नहीं बोलना, तू सिर्फ सच ही सच बोलना है, बस ऐ उपदेश दे देंदे सन। किसी दे होर दिन आया तो कहन लगे भाई बेलिया किसी के उपर क्रोध नहीं करना, तू निमाणे होकर के रहना है, यानी कि जैसा भी उपदेश सतगुरु ने करना। भाई बेला जी गंढ मारते जाते सन, यानी कि इतने निमाणे हो गए गुरु के उपदेश, एक तो गुरु के उपदेशों गुरु की ताकत काम करती है, दूसरा शिष्य ने भी यह जान लिया सी कि गुरु पूरा है, गुरु ही मैं मुक्ति दे सकता है, गुरु ही उस पार ब्रह्म तक ले जा सकता है जिथे जा करके जीवात्मा आवागमन तो मुक्त हो सकती है, यानी कि उस रस्ते नू अपना लिया। प्रैक्टिकल तौर पर इतने निमाणे हो गए कि यानी कि गुरु का ही रूप हो गए। ये अगले दिन एक बारी की होया कि भाई बेला जी तैयार होकर के जल्द गुरु साहब को पहुँचे ने, तो गुरु साहब उसले जल्दी भी सन तैयार होकर के किथे जा रहे सन, तो बेला ने जिसले मथा टेक करके अब पाठ पूछया है कि आज का की पाठ है, तो गुरु साहब ने मुस्करा करके कहा वाह भाई बेला ना पहचाने वक्त तो ना पहचाने बेला, और घोड़े से सवार होकर के चले गए ने। तो भाई बेला जो सन अक्षरी ज्ञान तो दूर सन, उन्होंने समझा कि शायद गुरु मैनू यही ज्ञान दे गए ने, यही पाठ पढ़ा गए ने, निमाणा तो है ही सीगा। वो सारा दिन चार घोड़िया की सेवा करता रहा और यही तुक नू रटदा रहा वाह भाई बेला ना पहचाने वक्त ना पहचाने वेला, यानी कि इतना निमाणा हो गया गुरु दे विच, इतना मस्त हो गया कि गुरु का ही रूप यानी अंदर बाहर गुरु ही गुरु देख रहा। उन्होंने इन्होंने लफ्जा के नाल कोई मतलब नहीं कि इन्हों का की अर्थ निकल रहा। पिछले सत्संग गुरु साहब ने स्पष्ट किया कि रतनागर जो सी सिर्फ मरे लफज नू जप करके ही महारिषि बन गया, और ऐसा ज्ञान दे सागर दा ऐसी रचना की कि जिसनू सारे ही अज मत्था टेकते हैं, जिसनू असी रामायण कह करके याद करते हैं, यानी कि लफ्जा का कोई भी अर्थ नहीं। गुरु साहब पहले ही उपदेश कर चुके हैं कि जिन्हां लफ्जा नू असी जप रहे हैं, चाहे सतनाम लफज है, चाहे वाहिगुरु है, या अल्लाह कीर्तन कुछ भी लफज है, उस दे विच अपनी कोई ताकत समर्था नहीं। असली चीज यह है कि जीवात्मा ने निमाणा होकर के दीन होकर के सतगुरु की शरण दे विच आना है, और ईमानदार बन करके सच्चा ईमानदार होकर के गुरु की सेवा करनी है, वह हर जगह गुरु के रूप में देखना है। तो भाई बेला जो है गुरु के रंग विच रंगे सन, और अगे पिछे जड़े पाठी सन जड़े अपने आप नू बड़ा उच्चा समझते सन। उच्चे का की भाव है कि गुरु साहब का जो दरबार लगता सी ते दरबार दे विच जितने संस्कृत दे वेद ग्रंथ शास्त्र होंदे सन गुरु साहब उन्हां दी भी व्याख्या करवांदे सन, यानी कि सत्संग दे विच सारे धर्मां दी ग्रंथां दी वाणी लई जांदी सी, और उस परमात्मा दा सच्चा उपदेश दित्ता जांदा सी। ते ओह उपदेश देण वाले जिहड़े ज्ञानी ध्यानी सन ओह उन्हां दे अर्थ देख रहे सन कि जिहड़ा अर्थ जो है की निकलदा है जिस तुक नूं भाई बेला जी रट रहे ने, ओह किस तरीके नाल इन्हां दा पार उतारा हो सकदा है। ओह सारा दिन उन्हां दा मजाक उडांदे रहे, पर भाई बेला जी कोई ईरखा द्वैषता नहीं, कोई निंदा नहीं, बड़े निमाणे होकर के अपने गुरु के मस्त रहे हैं। शाम जो गुरु साहब आए ने तो सारे ने जो दरबार लगा है ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਬੇਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਉਸ ਤੁੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤੁੱਕ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਠ ਅੱਜ ਭਾਈ ਬੇਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸੋ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਕਿਆ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰ ਇਹੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਤਨੇ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਮਾਣੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਿਭਾਣੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਕਲੀ ਮਿਠਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਘੋਲ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਮਿਠਾਸ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਝੂਠੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਮੂੰਹ ਟੇਢਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਤਨੇ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਜਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਸਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਝੂਠੀ ਨਿਮਾਣੀ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਦੀਨਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠੀ ਦੀਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਚੀ ਜੀਨਤਾ ਦੇ ਬਗੈਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੋ ਭਾਈ ਬੇਲਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤੁੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਤੁੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਔਰ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਆਵਾਗਮਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਲ ਦੇ ਆਏ ਜੱਟ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਫਜ਼ੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਚੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਥ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਸਨੇ ਵਕਤ ਔਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਉੱਪਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਇਸੇ ਤੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੰਗ ਮੰਗਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਭੰਗ ਮੰਗਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਟ ਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਕਲਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਦਵੀ ਜਾਂ ਇਹ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਬੇਲਾ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਿੱਧ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਇਤਨੇ ਦਿਆਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਮਾਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਪਰ ਹੋਮਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਮਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਂਸ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4-5-10 ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਸਮੇਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਂਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੋਮੈ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਮੈ ਇਤਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੱਲੇ ਝੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਅਖੀਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਦਰਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜੜ੍ਹ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ ਉਹ ਜੜ੍ਹੋਂ ਕੱਟਦਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਂਸ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸਦੀਆਂ ਬਾਂਸਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਹੋਮੈ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਭੰਗ ਦਾ ਜੋ ਮਟਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਸਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬੇਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗਲਾਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੰਗ ਦਾ ਲਵੋ ਔਰ ਕੁਰਲਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾਉਣੀ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਟਕਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕੁਰਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਸਿੰਘੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਲਾ ਕੀਤਾ ਭੰਗ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਹੋਇਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾਉਣਾ, ਅੰਦਰ ਲੰਘਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬੇਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਧਰਮ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪ ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਪਦ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜੋ ਸਨ, 6 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਦਵੀ ਪੂਰਨ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਐਸਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕਰਕੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਮਾਣਾਪਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੜਫ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਤਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਚਨ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਹੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਅਭਿਮਾਨ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਨਿਮਾਣਾਪਨ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਸਲੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣਾਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਚੱਲੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਗ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬੇਲਾ ਜੀ ਨੇ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਕਤ ਔਰ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਣੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਵਾਗਮਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਥਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਬਹੁਤ ਚਤੁਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਸਾਸੰਗ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਤਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਧਿਆ ਜਾਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਧਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਉਦਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇੱਕ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਸਿਰਫ ਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਉਦਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਇਧਰੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਲਾਉਣਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ, ਇਹੀ ਉਹ ਮੰਤਰ ਸੀ, ਇਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਜੋ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਯੁੱਗ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੀਵ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ